नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट के 12वें एपिसोड में। आज की कहानी की खास बात यह है कि एक फिल्म आई थी दृश्यम अजय देवगन की, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म में एक हादसे में अजय देवगन से एक कत्ल हो जाता है और सारे फैमिली वाले इसमें शामिल होते हैं और उस लाश को ले जाके उस जगह दफनाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन बन रहा था, और उससे पहले जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पर जब पुलिस आकर उस गड्ढे को खोदती है तो वहाँ एक जानवर का कंकाल निकलता है और आखिर में लाश जो मिलती है वो एक जो नया पुलिस स्टेशन बन रहा था उसके नीचे मिलती है। तो आज की जो कहानी है उस कहानी में भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है जैसा इस दृश्यम फिल्म में हुआ था। बस एक चीज़ अलग थी कि कातिल जो बताता है कि लाश कहाँ पर दफनाई थी, पुलिस को उसी जगह पर लाश मिलती है। आईजी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कई बार दृश्यम फिल्म देखी और साथ ही स्पेशल 26 भी देखी। हुआ ऐसा था कि 45 दिन गुजर चुके थे और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था, और कत्ल भी किसका हुआ था, उस शहर के बहुत ही रईस अरबपति आदमी के, उस शहर की बहुत ही जानी मानी हस्ती का जो एक जाने माने कॉलेज के डायरेक्टर भी थे। ये इतने बड़े आदमी थे कि उस वक्त राजनाथ सिंह जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे वो छत्तीसगढ़ पुलिस को बोलते हैं कि इस केस की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह थे, उनका भी प्रेशर था पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई गई जो इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। बड़ी ईमानदारी से बहुत अच्छे से पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और करीब 44 दिन बाद इस केस की कहानी सामने आई, ये केस सुलझा। कहानी है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नाम का कॉलेज है जिसके डायरेक्टर का नाम अभिषेक मिश्रा। इस कॉलेज का बहुत नाम था, बहुत माना हुआ कॉलेज था। इस कॉलेज में एक महिला काम करती थी जिनका नाम था किमसी जैन। तो दोनों अभिषेक मिश्रा और किमसी जैन साथ में काम करते हैं और दोस्ती बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और किमसी जैन की शादी कहीं और हो जाती है और अभिषेक मिश्रा की शादी कहीं और हो जाती है। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए था, एक दूसरे के टच में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। शादी के बाद भी अभिषेक मिश्रा किमसी जैन से टच में रहता है, उसके संपर्क में रहता है और उसी तरह की बातें करता है जिस तरह शादी के पहले किया करता था। उसका बिहेवियर भी ऐसा था जैसा उसका शादी के पहले किमसी से था। लेकिन यहाँ पर किमसी जैन अभिषेक मिश्रा से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन अभिषेक इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। किमसी जैन के हस्बैंड विकास जैन ने किमसी जैन के फ़ोन पर इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस देख लिए थे। तो किमसी को जब पता चलता है कि उसके हस्बैंड को ये सब पता चल गया है तो किमसी जाकर अपने हस्बैंड को बताती है कि किस तरह उसका पुराना रिश्ता था उससे, ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी पर फिर भी अभिषेक मिश्रा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और उसको परेशान करता जा रहा है। उसके बाद दोनों किमसी और उसका हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में कुछ करना होगा। 9 नवंबर 2015 को किमसी अभिषेक मिश्रा को फ़ोन करती है और उसे अपने घर स्मृति नगर में मिलने को बुलाती है। अभिषेक मिश्रा उसी दिन दिल्ली से लौटा था और फ़ोन आने के बाद अपने घर वालों को बिना बताए वो किमसी जैन से मिलने उसके घर के लिए निकल पड़ता है और वो सीधे किमसी जैन के घर पहुँचता है। इसके बाद अभिषेक मिश्रा गायब हो जाता, उसका कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। लेकिन उसी रात अभिषेक मिश्रा के फ़ोन से उसके पिता को, उसकी पत्नी को, मतलब उनके घर वालों को उसके नंबर से ही मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो कहीं व्यस्त है, कहीं बिजी है और वो आने में लेट हो जाएगा। तो ये मैसेजेस मिलने पर घर वाले उसकी चिंता नहीं करते। फिर बाद में देर रात उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन 10 नवंबर 2015 को भी अभिषेक मिश्रा घर नहीं पहुँचता तो घर वालों को फिकर हो जाती। अभिषेक मिश्रा के पिता आईपी मिश्रा, शहर के माने हुए आदमी की वहाँ बहुत जान पहचान होता, और वो पहुँचते हैं प्रदीप गुप्ता के पास। प्रदीप गुप्ता उस वक्त पुलिस में आईजी थे और अभिषेक के पिता आईजी को बताते हैं कि उनका बेटा रात भर से घर नहीं लौटा है। तो पुलिस, चूँकि इतने बड़े आदमी का बेटा था, वो खुद भी अभिषेक एक माने हुए इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर था, तो पुलिस फटाफट हरकत में आ जाती है और पहले तो मिसिंग रिपोर्ट लिखती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है पर कुछ खास पुलिस को हासिल नहीं होता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि मोबाइल की लास्ट लोकेशन से पता चलता है कि अभिषेक की स्कोडा कार एक टोल नाके से गुजरती है और उस टोल नाके के CCTV कैमरे में ये नज़र आता है कि उस कार में एक महिला भी थी, पर महिला की शक्ल साफ नज़र नहीं आती। पुलिस की तलाश जारी रहती है और पुलिस को ये भी लगता है कि ये किडनैपिंग हो सकती है क्योंकि एक अमीर बाप का लड़का है तो रैंसम के लिए भी कॉल आएगा, पर रैंसम के लिए भी कोई कॉल नहीं आता। कुछ समय गुजरता है, फिर रायपुर एयरपोर्ट के पास प्रदीप की स्कोडा गाड़ी पुलिस को मिलती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है क्योंकि पुलिस को गाड़ी की तलाश भी होती है और अभिषेक की भी, पर गाड़ी के अंदर अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिलता। तो अब पुलिस मान लेती है कि शायद अभिषेक का किडनैप हो गया है, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा होता है और रैंसम का कोई कॉल नहीं आता है, तो पुलिस को ये डाउट भी था कि शायद उसका मर्डर ना हो गया हो। पुलिस ने सारी जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू की, उस एरिया के सारे मोबाइल्स को ट्रेस करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। कई सारे नंबर भी मिले लेकिन कोई काम का नहीं था क्योंकि वो नंबर कोई कलीग का था, कोई फैमिली का था, कोई जानकार का था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि मामला एक अमीर घराने का माने हुए व्यक्ति का था। कुछ टाइम और गुजरता है, फिर अचानक एक दिन अभिषेक के घर पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे सबसे पहले जो सामने आदमी होता है वो बोलता है लाल सलाम, और लाल सलाम बोलने के बाद वो आदमी कहता है कि अभिषेक हमारे कब्ज़े में है और हमें इतने करोड़ रुपये चाहिए, और वो बिहार का पता बताता है। फिर फ़ोन आता है और फिर वही लाल सलाम, इनके फ़ोन को पुलिस ने टैप किया होता है, ये पुलिस को खबर भी करते हैं और फिर ये शक ये होता है कि नक्सलियों ने अभिषेक को किडनैप कर लिया है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोई भी चीज़ इस तरफ पॉइंट नहीं कर रही थी कि अभिषेक मिश्रा को नक्सलियों ने किडनैप किया है, और पुलिस को ये भी लग रहा था कि ये फ़ोन पुलिस को गुमराह करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि पास्ट केसेस के अकॉर्डिंग नक्सली जब किसी को किडनैप करते थे और वो जब घर वालों को फ़ोन करते थे तो लाल सलाम कर कभी फ़ोन नहीं किया उन्होंने। पर पुलिस नक्सलियों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और कोई भी लिंक नक्सलियों की तरफ नहीं मिला। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही और ख़ास करके कॉल रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करती रही, और करीब लाखों टेलीफोन नंबर्स को पुलिस ने चेक किया और आखिर में 1800 फ़ोन नंबर्स को ज़ीरो इन किया और इन 1800 फ़ोन नंबर्स को बारीकी से चेक करती रही, और पुलिस को एक नंबर मिला और वो नंबर था किमसी जैन का। पुलिस को पता चलता है कि किमसी जैन अभिषेक के ही ऑफिस में काम करती थी और दोनों में पास्ट में करीबी रिश्ते थे। पुलिस को ये सब जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है जिससे पता चले कि अभिषेक की गुमशुदगी की वजह या गुमशुदगी में इसका कोई हाथ हो, क्योंकि पुलिस ने उस दिन का मोबाइल लोकेशन देखा था तो अभिषेक का जो लास्ट लोकेशन था और किमसी जैन का लोकेशन सेम नहीं था। किमसी का लोकेशन स्मृति नगर उसके घर का ही दिखा रहा था, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि आखिरी में अभिषेक जहाँ कहीं भी था किमसी उसके साथ नहीं थी। पुलिस फिर यहाँ के अटक गई कि क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इस इन्वेस्टिगेशन के जो IG थे वो दृश्यम और स्पेशल 26 देखते थे कि कोई क्लू मिल जाए, उससे उनको समझ में आया कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अब किमसी जैन पे फोकस किया इन्होंने तो इनसे कुछ हासिल हुआ नहीं। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अब किमसी जैन के घर वालों को या उसके रिश्तेदारों को भी चेक करना चाहिए, तो अब किमसी जैन के मोबाइल नंबर के जरिए उनको विकास जैन जो किमसी जैन के हस्बैंड थे उसका नंबर मिला। अब इन्होंने विकास जैन के नंबर को मॉनिटरिंग पे लगाया, खास तौर पे 9 नवंबर 2015 को जिस दिन अभिषेक मिश्रा गायब हुआ, कि उस दिन विकास जैन की लोकेशन क्या थी, उसने किस किस से बात की और वो कहाँ था। तो पुलिस को ये पता चला कि अभिषेक मिश्रा और विकास जैन की आपस में कभी बात नहीं हुई, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में जो हैरतअंगेज चीज़ सामने आई वो ये कि 9 नवंबर 2015 की शाम स्मृति नगर से लेकर अभिषेक का जो आखिरी नोन लोकेशन था उन सारी लोकेशंस पे विकास जैन का मोबाइल की लोकेशन भी सेम थी। जहाँ जहाँ अभिषेक की लोकेशन मिली वहाँ वहाँ पर विकास जैन की लोकेशन भी सेम मिलती रही, और आखिर में जहां स्कोडा गाड़ी रायपुर एयरपोर्ट के पास अभिषेक की मिली, वहां पर भी विकास जैन के मोबाइल की लोकेशन थी। तो जब पुलिस को दोनों की लोकेशंस हर जगह पे सेम मिली, तो उससे पुलिस को लगा कि उस दिन उस शाम को दोनों साथ में ही थे। ये बात है 22 दिसंबर 2015। 9 नवंबर 2015 को अभिषेक गायब हुआ था, लगभग 44 दिन गुजर गए थे, और इस 22 दिसंबर 2015 की रात को पुलिस को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि अभिषेक मिश्रा और विकास जैन की लोकेशन सेम थी। पुलिस उसी वक्त विकास जैन के घर पहुंचती है, उसे पुलिस थाने लेके आती है पूछताछ के लिए। उस दिन किमसी जैन दिल्ली गई हुई होती कोई काम से, तो पुलिस जैन से अपनी पूछताछ शुरू करती है। विकास जैन कोई भी चीज़ मानता नहीं, कोई चीज़ पर कबूल नहीं करता। उसके बाद पुलिस जब उसको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस अपनी सारी बताती है, उसकी लोकेशंस सारी उसके सामने रखती है, और प्रेशर से अपना प्रेशर लगा कर जब उससे पूछताछ शुरू करती है, तो विकास जैन मान जाता। और फिर विकास जैन ने अपना पूरा सच बताया और अपनी कहानी सुनाई। और कहानी यही ये थी कि अभिषेक मिश्रा किमसी जैन साथ में काम करते थे, दोनों में दोस्ती बढ़ी, नज़दीकियाँ बढ़ी, उसके बाद दोनों की अलग अलग जगह शादी हो गई। शादी होने के बाद विकास जैन को कुछ कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो नाराज़ होता है। किमसी जैन उसको सच बताती है कि इन दोनों में शादी के पहले रिश्ते थे, अब वो कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, पर अभिषेक मिश्रा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो रिश्ता अभी भी जारी रखना चाहता है। उसके बाद ये प्लान बनाता है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, और वो किमसी के चाचा को अपने साथ लेता है, उनका नाम है अजीत जैन। फिर किमसी जैन, विकास जैन और अजीत जैन तीनों ने मिलकर ही ये प्लान किया कि उसको रास्ते से हटाना ज़रूरी है। फिर 9 नवंबर 2015 को तीनों सहमति से ये प्लान बनाते हैं। किमसी जैन फ़ोन करके अभिषेक मिश्रा को घर बुलाती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, अजीत जैन और विकास जैन किसी वजनी सी चीज़ से अभिषेक मिश्रा के सर पर वार करते हैं। जब वो वार की चोट से ज़मीन पर गिर जाता है, तो किसी तेज धार के हथियार से उसको तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। इसके बाद वो उसकी लाश को घर पे छोड़ते हैं। उसकी कार, जिस कार से वो आया, तो वो एक सबूत था कि वो वहाँ आया। वो कार में बैठते हैं और भिलाई से ले जा के रायपुर एयरपोर्ट के पास वहाँ कार को छोड़ते हैं। पीछे पीछे इनका चाचा बाइक पे था, तो जब वह एयरपोर्ट के पास सुनसान जगह पर कार को छोड़ते हैं, वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं, इसके साथ बाइक पर बैठते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद अपने ही गार्डन में एक 8 फीट का गड्ढा खोदते हैं, इसकी लाश को एक पॉलीथीन में लपेटकर उस गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद वो गड्ढे को भर देते हैं और इस गड्ढे के ऊपर बाकायदा किमसी जैन गोभी के फूल के पौधे लगाती है ताकि किसी को शक ना हो। इस पूरे केस में एक गलती यही की इन्होंने, जिसकी वजह से ये पकड़े गए, कि विकास जैन जब गाड़ी को छुपाने रायपुर की तरफ जाता है, तो अपने पास अभिषेक का फ़ोन रख लेता है और रास्ते से बार बार घर वालों को व्हाट्सएप या मैसेज करता रहता है कि आने में लेट हो जाऊंगा, कहीं बिजी हूं, ताकि घर वालों को लगे कि ये मैसेज अभिषेक कर रहा है और उनको कोई शक ना हो। उससे ये हुआ कि घर वाले पैनिक नहीं करते, रात को पुलिस के पास नहीं जाते। उसके बाद अभिषेक का लोकेशन भी मूव कर रहा है कार में, तो उससे ये हुआ कि अभिषेक अब रायपुर में है, आखिरी लोकेशन रायपुर की थी। यहाँ तक तो इसकी प्लानिंग ठीक थी, बस एक गलती किमसी जैन के हस्बैंड विकास जैन ने ये की, अभिषेक मिश्रा का फ़ोन तो साथ में लेके बैठ गया, उसके साथ वो उसने अपना फ़ोन भी साथ में रखा और उसको ऑफ नहीं करा, उसे ऑन रखा और एक दो फ़ोन कॉल्स भी किए, जिससे उसकी लोकेशन भी पुलिस को पता चल गई। अब इससे दोनों की लोकेशन मैच हो गई और विकास जैन का भांडा फूट गया। उसके बाद कुछ समय बाद अजीत जैन को, उसके चाचा को, किमसी के चाचा को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस की टीम दिल्ली जाती है, जहां से किमसी जैन को गिरफ्तार करके वापस लाया जाता है, और पुलिस इन पे अभिषेक मिश्रा के किडनैपिंग और मर्डर का केस दर्ज करती है। ये केस अभी कोर्ट में है, इसका फैसला जनवरी 2020 में आने वाला था, उसके बाद वो पोस्टपोन हुआ 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जज छुट्टी पे था, 26 फरवरी को भी जज छुट्टी पे था, तो फैसला 13 मार्च 2020 पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद सारे कोर्ट बंद हो गए ये कोरोना पैंडमिक की वजह से, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसी कोई अपडेट मुझे पता चलता है या मिलता है, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो ये थी कहानी अभिषेक मिश्रा मर्डर की, जो कहानी काफ़ी कुछ दृश्यम फिल्म से मिलती जुलती थी। मैं आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और तलाश इंडिया क्राइम्स के 12वें एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।